मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों नमस्कार। आज एकेडमी फॉर एक्सीलेंस के इस 18 सितंबर 2015 के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इसी क्रम में मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन तीन नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी के अगले साल फरवरी में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन तीन साथियों के नाम हैं देव प्रकाश मीना टोंक राजस्थान से, अंकित कुमार गुप्ता दिल्ली से, रमजान अली गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। तो देव प्रकाश, अंकित और रमजान अली, आप तीनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, कल सैटरडे है, परसों संडे है। आप सब जानते हैं सैटरडे संडे को डेली ऑडियो गाइडेंस नहीं आता है, लेकिन जो न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स होंगी कल आप लोगों को नॉलेज सेंटर पर वो मिलेंगी। और जो सेकेंड बैच और थर्ड फर्स्ट बैच के जो स्टूडेंट रहे हैं उनके लिए स्पेशल ऑडियो प्रोवाइड किया जाएगा, और जिसका सब्जेक्ट होगा जो पारिभाषिक शब्दावली के अर्थ को लेकर के जो हम बातें कर रहे हैं, जिस पर आपको पहले से ही उसके दो भाग प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उसी का तीसरा और अंतिम भाग इस सप्ताह आप लोगों के मेल पर भेजा जाएगा। तो आप लोग सभी अपने मेल को एक्सेस कर लेंगे। मित्रों, ये पूर्व सूचना है। दोस्तों, लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से में कल हम लोग फोकस पर बातें कर रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने उबने के ऊपर बात की, वो भी कहीं न कहीं मन से ही जुड़ा हुआ, कहीं न कहीं क्या, सीधे सीधे मन से ही जुड़ा हुआ है। और डेफिनेटली फोकस भी मन से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो थोड़ा सा दिमाग से ज्यादा जुड़ा हुआ है। हालांकि हम बोलचाल की भाषा में मन, दिमाग, विचार, इच्छा, इन सब का इस्तेमाल पर्यायवाची शब्दों के रूप में करते हैं, लेकिन दरअसल ऐसा है नहीं, इनमें थोड़ा सा भेद है जिसके बारे में मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं। और मैंने खासकर इसके भेद को इसलिए बताया था क्योंकि जब हम भेद को समझ जाते हैं तो फिर हमारी जो एनालिसिस पावर है वो न केवल बढ़ती ही है बल्कि एग्जैक्ट भी होती है। जैसे कि कोई डॉक्टर बीमारी को बहुत सही तरीके से डायग्नोस कर ले। तो मित्रों, ये जो फोकस का संबंध है जिस पर मैंने कल भी आप लोगों से बात की थी, आज उस पर कुछ और बातें करके मैं इस टॉपिक को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। देखिए, इसका संबंध दिमाग से ज्यादा है। आप देखेंगे, आप लोगों ने, मैं समझता हूं कि प्रैक्टिकल भी किया होगा, और मैं तो हमेशा ये रिक्वेस्ट आप लोगों से करता हूं कि जो बातें लाइफ मैनेजमेंट के अंतर्गत मैं आप लोगों को बताता हूं, प्लीज उसे थोड़ा सा इंप्लीमेंट करके देखें, क्योंकि फायदा तो इंप्लीमेंट करने से ही होगा। और मेरे पास कल के मेल में मैंने बताया था, विकास चौहान दिल्ली से मेल आया था, जिन्होंने बताया कि 6 महीने पहले 8 महीने पहले उनकी क्या स्थिति थी, और जब ये लाइफ मैनेजमेंट की चीजों को उन्होंने अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना शुरू किया तो नाउ इज टोटली डिफरेंट पर्सन, और जो डिफरेंट डिफरेंस है वो बहुत ही पॉजिटिव वे में है। तो मित्रों, ये सब के साथ होगा, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा कि एक दिन, दो दिन, तीन दिन किया और कहे कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है तो छोड़ो। जो चीज आपके दिमाग में 20 साल से जमी हुई है, आपको लगता है कि क्या वो दो दिन, चार दिन, पांच दिन या कि 20 दिन में खत्म हो जाएगी? अगर ऐसे ही हो जाता तो फिर क्या कह रहे थे? मित्रों, ऐसा नहीं होता है, है ना। दशरथ मांझी को भी पहाड़ को तोड़ने में 20 साल लग गए, क्योंकि वो पता नहीं 200 साल से वो जमी हुई मिट्टी थी, पहाड़ और है क्या, जमी हुई मिट्टी है। तो हमारे दिमाग के अंदर भी, हमारे मन के अंदर भी इसी तरह से ढेर सारी मिट्टियां जमा हो गई हैं, और ये जो मिट्टी जमा हुई है केवल हमारे ही उम्र की मिट्टी नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों के उम्र की भी मिट्टी है जो उनके माध्यम से हमें ट्रांसफर हुआ है। तो इसीलिए आपसे धैर्य की अपेक्षा है। जब तक आप धैर्य से इन चीजों को हैंडल नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि आपको एक सही तरीके से जो एक विजिबिलिटी है, जो दिखाई दे, आप जिसको पकड़ सकें, जिसको समझ सकें, वो परिवर्तन आएगा। तो मित्रों, मैं अब फोकस पर थोड़ी सी और बातें आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। देखिए, मैंने अभी कहा कि जो फोकस है उसका संबंध थॉट्स से ज्यादा है। थॉट्स का मतलब फिर आप विचारों से, दिमाग से, उससे भी कह सकते हैं। हम एक पर्टिकुलर चीज के बारे में सोचते हैं या पर्टिकुलर काम में लगे रहते हैं, राइट। तो हम काम में तो लगे ही हुए हैं, हम काम अपना नहीं बदलते, लेकिन जो हमारा फोकस जो बिगड़ता है वो बिगड़ता है बेसिकली हमारे सोच के स्तर पर, हमारे हमारी जो आंखें हैं वो उसे ही देख रही हैं, हमारे हाथ जो काम कर रहे हैं वही काम कर रहे हैं, हमारा शरीर भी बिल्कुल वही है और शरीर में कोई हलचल भी नहीं है, हम बिल्कुल स्ट्रेट हैं और उसी काम में लगे हुए हैं। लेकिन हमारा दिमाग उस पर्टिकुलर या छोटे से टाइम के लिए वहां से हट करके कहीं और चला जाता है, उसी को हम कहते हैं डिफोकस्ड होना या फोकस बिगड़ जाना। मित्रों, इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है। देखिए, संकल्प की बात तो मैं हमेशा से ही करता आया हूं, संकल्प और विकल्प की बात। वो जो संकल्प है उसमें इतनी ताकत होती है ना, वो आदमी को इतना बांध कर रखता है, और जब आदमी को बांध कर रखता है कि मैं बात कर रहा हूं, तो उसका मतलब है कि वो आदमी के दिमाग को बांध कर रखता है। शरीर को बांधने की बात मैं नहीं कर रहा हूं। संकल्प में इतनी मजबूती होती है कि फिर वो आपको इधर उधर भटकने नहीं देता। तो इस तरह से डिफोकस्ड हो रहा है, तो उसका एक मतलब तो आप ये निकाल सकते हैं कि आप में कहीं ना कहीं संकल्प की कमी है। लेकिन मित्रों, संकल्प भी सबके एक जैसे नहीं होते। संकल्प की कमी है इसका मतलब है नहीं कि संकल्प है ही नहीं, उसमें मजबूती की कमी है। और संकल्प में मजबूती में कमी तब आती है जब हमारे पास ढेर सारे विकल्प होते हैं, और वो जो विकल्प भी होते हैं, मजेदार बात है, इमेजिनरी होते हैं, वो सच में होते नहीं हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो विकल्प होते और बहुत ही सॉलिड विकल्प होते तो आदमी उस विकल्प को पकड़ लेता, क्योंकि जो संकल्प उसने लिया है वो संकल्प तो अभी हवा में है, पता नहीं होगा नहीं होगा। जैसे आप सब सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो अब सिविल सर्विस में होगा नहीं होगा भगवान जाने, कौन जानता है। लेकिन मान लीजिए कि अभी आपको कोई नौकरी मिली हुई है, तो वो तो सच है ना। तो आप जब विकल्प के बारे में जब सोचते हैं तो दो तरह के विकल्प होते हैं, एक तो वाकई में विकल्प होता है और दूसरा इमेजिनरी विकल्प होता है। यार चलो सिविल सर्वेंट नहीं बनेंगे तो फिर ये कर लेंगे, फिर ये तो हो ही जाएगा, वो तो हो ही जाएगा, पता नहीं वो भी होगा कि नहीं होगा। तो मित्रों, जब विकल्प अगर सॉलिड है, याद रखिए, तब ये संकल्प को ताकत देता है। अगर विकल्प यथार्थ में है, वो सच है, तो ये संकल्प को कमजोर नहीं करता, ये और ताकत देता है। क्योंकि आपको तब ताकत यहां से मिलती है कि यार चलो अगर यहां नहीं हुआ तो वो तो हमारे पास है ना, हमारे अस्तित्व के सामने कोई चुनौती तो नहीं है, कोई संकट तो नहीं है। लेकिन जब हमारे पास ये चीज है, हम इससे बेहतर के लिए कोशिश कर रहे हैं, और आदमी को जिंदगी भर बेहतर के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये जो इमेजिनरी जो एक हमारे सामने अल्टरनेटिव्स आते हैं, विकल्प आते हैं जो दिमाग प्रोवाइड करता है, आपको इससे बचना होगा। आप अच्छे खासे बैठ करके फिल्म देख रहे हैं और आपका दिमाग सोचता है कि यार इस समय पढ़ लिया होता तो, इमेजिनरी है वो, पढ़ ही लेते। और मजेदार बात है कि अगर आप पढ़ रहे होते तो सोचते यार पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, क्या फर्क पड़ जाता, फिल्म ही देख लेते। देन व्हाट टू डू, सोच करके देखिए, इसके इसका जो छल कपट है, ये जो आपके साथ जो तमाशा कर रहा है, जो छद्म खेल खेल रहा है, प्लीज इसको समझने की कोशिश कीजिए। दिमाग आपका है, सोच आपकी है, प्रेफरेंस आपके हैं और चॉइस भी आपकी है, तो व्हाई नॉट द सॉलिड चॉइस। आपके हाथ में सॉलिड चॉइस क्यों नहीं है, क्यों आप बीच में झूले की तरह झूल रहे हैं, जिधर भी हवा ने थोड़ा सा धक्का दिया उधर झूलने लगे। तो मित्रों, ये तो एक बड़ी चीज को पाने का तरीका नहीं है। दूसरी बात क्या होता है दोस्तों, हम जब भी कोई काम करते हैं, याद रखिए, दूसरा मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, पहली भी प्रैक्टिकल बात है, तो उसका हमेशा एक केंद्र बिंदु होता है, हमेशा केंद्र बिंदु होता है, उसका एक सेंट्रल पॉइंट होता है, और इसके बाद उसके ढेर सारे दूसरे पॉइंट्स होते हैं, है ना। तो हमारा दिमाग क्या करता है कि सेंट्रल पॉइंट को तो जानता है, वो ऐसा नहीं कि वो नहीं जानता, लेकिन इस सेंट्रल पॉइंट को जानने के साथ साथ जो उसके साथ जुड़े हुए जो दूसरे पॉइंट है वो उन्हें भी जानता है। और मुश्किल ये है जो दिमाग के साथ, क्योंकि दिमाग साहब मेहनत नहीं करना चाहता, आराम चाहता है, हर आदमी आराम चाहता है, लेकिन जो मेहनत को आराम बना लेते हैं वही दुनिया में कुछ अलग कर जाते हैं। बस सीधी सी बात है, मेहनत भी एक आराम होता है। हालांकि ये आपको बड़ी विचित्र सी बात लगेगी कि यार मेहनत भी कैसे आराम हो सकता है, सच्चा आराम तो मेहनत ही होता है, इस पर हम लोग कभी बात करेंगे। तो देखिए, होता क्या है कि जो सेंट्रल पॉइंट है उसको अंजाम देने में दिमाग को मेहनत करनी पड़ेगी, शरीर को मेहनत करना पड़ेगा। मैं आपको एक आंकड़ा बता रहा हूं मित्रों कि जो सोचने समझने और पढ़ने जो दिमागी काम है कह लीजिए, ये 2 घंटे का जो काम है ये फिजिकल लेबर के 8 घंटे के काम के बराबर होता है। आप 8 घंटे फिजिकल लेबर करके आप जितनी एनर्जी वेस्ट करते हैं या खोते हैं या लगाते हैं, 2 घंटे के मेंटल वर्क में उतनी एनर्जी आपकी खत्म हो जाती है। ये साइंटिफिक रिसर्च की मैं बात बता रहा हूं। तो दिमाग तो चाहते ही है कि भैया छुट्टी मिले, मुक्ति मिले इससे, तो इसीलिए फिर वो क्या होता है, और सेंट्रल पॉइंट तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहां मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो उनकी बजाय उसका ध्यान ज्यादातर ये जो छोटे 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 पॉइंट है इधर भटकता है और उसका फोकस बिगड़ जाता है। जैसे चलिए मैं एक उदाहरण के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अभी अक्टूबर में यहां क्लासेस लग रही हैं भोपाल में एकेडमी की तरफ से, उसमें स्टूडेंट्स आ रहे हैं, राइट। अब आप देखिए कि इसका सेंट्रल पॉइंट क्या है, लेट्स एनालाइज व्हाट इज द सेंट्रल पॉइंट, व्हाट व्हाई आर यू कमिंग हियर। सिंपल सी बात है, आप सब यहां क्यों आ रहे हैं, बहुत सी बातें हैं। क्या आप भोपाल शहर को देखने आ रहे हैं, क्या भोपाल में आप 15 दिन की छुट्टियां मनाने आ रहे हैं, क्या आप भोपाल में देश भर के लड़कों के साथ गेट टुगेदर करने आ रहे हैं, क्या आप चेंज के लिए आ रहे हैं, क्या आप पढ़ने आ रहे हैं, या क्या आप ये जानने आ रहे हैं कि आईएएस की तैयारी कैसे की जानी चाहिए। अब आपको डिसाइड करना है कि व्हाट इज योर पर्पस। और मजेदार बात यह है कि ये सारे पर्पस हैं यहां, यहां सारे पर्पस है। 15 दिन का आपका चेंज भी होगा, देश भर के आप इतने सारे लड़कों से मिलेंगे भी, पढ़ेंगे भी, आप जानेंगे भी कि आईएएस की तैयारी कैसे करनी चाहिए। पिकनिक जैसा भी होगा, जब एक साथ आप खाएं, इतने सारे स्टूडेंट लंच करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तो इससे अच्छी पिकनिक और क्या हो सकती है। और जिस जगह पर क्लासेस लगनी है वो जगह बहुत खूबसूरत है, भोपाल अपने आप में बहुत खूबसूरत शहर है, वो एरिया बहुत खूबसूरत है, तो आप उसको पिकनिक भी कह लीजिए। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन सेंट्रल पॉइंट क्या है इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। सेंट्रल पॉइंट है आईएएस की तैयारी कैसे करनी चाहिए, आप ये जानने आ रहे हैं, पढ़ाई तो उसका माध्यम है, ये सेंट्रल पॉइंट है। अब जब आप यहां आते हैं, अब आप देखिए कि आपका फोकस कैसे बिगड़ना शुरू होता है, या स्टूडेंट क्या क्या सोचना शुरू करते हैं। उसको उस होटल में रुकवा दिया गया, मेरा होटल जरा सा बेकार है, उसमें कम उसका कमरा छोटा है, इसका कमरा बड़ा है, यहां ये फैसिलिटी नहीं है, वहां खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, तो लाइट चली गई, पता नहीं क्या क्या चीजें फिर दिमाग में आनी शुरू होती है। अब यहां पर जो दिमाग की कारस्तानी है वो ये है कि आप आईएएस कैसे बना जाए, ये इस उद्देश्य को लेकर यहां आए हैं और वो काम वहां कराया जा रहा है, राइट। तो आपके जो मूल्यांकन का आधार होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जिस पर्पज से हम आए हैं वो पर्पज हमारा कितना परफेक्ट तरीके से पूरा हो रहा है। उसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो चिंता की बात है, डिबेटेबल है, उस पर आपत्ति हो सकती है। लेकिन अब जो दूसरी चीजें हैं वो उतनी आपत्तिजनक नहीं होंगी, एक मतलब एक सामान्य स्तर की तो सारी चीजें होनी ही चाहिए और वो हम सब जानते हैं। लेकिन मुश्किल वहां होती है जहां हमारा दिमाग वहीं फोकस्ड हो जाता है। कैसे मुश्किल होती है, अब क्लास में बैठे हुए हैं, आराम से लेक्चर चल रहे हैं, बातें हो रही हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग कहां घूम रहा है मालूम है, कि यार रात में जाएंगे तो पता नहीं कमरे में बिजली होगी कि नहीं होगी, यार कमरा साफ हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, यार अभी तो 10 मिनट यहां से पैदल फिर जाना पड़ेगा, कितना अच्छा होता है एकदम सटा हुआ होता। तो इस तरह की फालतू की चीजों में दिमाग जाने लगता है, भटकने लगता है, और यहीं पर आपका दिमाग डिफोकस्ड हो जाता है, मेन चीज से हट करके दूसरी चीज की तरफ चला जाता है। जैसे मेरे पास मेल आया, मेल में यह है कि मेरे प्री एग्जाम मैंने दिया और प्री एग्जाम में मेरा सेकेंड पेपर है, सेकेंड पेपर के बहुत से क्वेश्चंस मेरे खराब हो गए, जबकि मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूं। तो अब मैं जब पढ़ने की कोशिश करता हूं, जानता था जब, अब मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं तो बार बार मेरा दिमाग वहीं चला जाता है कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अब आप देख रहे हैं ना, अरे भैया वो आपके हाथ से गया, वो तीर आपके धनुष से छूट चुका है, अब उसके बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा कि वो तीर निशाने पर लगेगा या नहीं लगेगा, अब तो अगला तीर जो धनुष पर चढ़ा रखा है उसके बारे में सोचो कि मैं इस तीर को निशाने पर कैसे लगाऊं, और पिछली जो गलतियां हो गई हैं उनके बारे में सुधार कीजिए, फोकस यहां होना चाहिए। लेकिन फोकस उस चीज पर है जिस पर आप का कोई नियंत्रण नहीं है, जिससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, जिसका कुछ हो ही नहीं सकता। मित्रों, अपने दिमाग के बारे में थोड़ा सा रेशनल तरीके से सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि ये जो डीफोकस्ड है ना, ये भी बहाने का काम करता है, बहानों का काम करता है। जो हम अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं उसे छुट्टी मिल जाए, इस बहाने के लिए ये ढाल का काम करता है। इससे बचने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, यंग हैं, ऊर्जा आपके पास है, जीवन को कम से कम 20 साल तो आप लोगों ने देखा ही है, आपके पास इतनी समझ है कि आप दूसरे के दिमाग की बात को छोड़ दीजिए, दूसरे की समस्याओं को छोड़ दीजिए, लेकिन अपने दिमाग की बात को तो पकड़ ही सकते हैं, अपने प्रति तो ईमानदार हो ही सकते हैं, अपनी बातों को तो समझ ही सकते हैं। समझने की कोशिश कीजिए, इसको रीजनिंग इस्तेमाल कीजिए, और रीजनिंग इस्तेमाल करके इसको अपने नियंत्रण में लीजिए। देखिए दोस्तों, इस तरह की जो समस्याएं हैं ये खत्म हो जाएंगी, सबके साथ होती हैं। ये मत मान करके चलिए कि ईश्वर किसी को इस धरती पर बिना इस समस्या के भी भेजता है, ये तो मैकेनिज्म का हिस्सा है। गाड़ी चलेगी तो थोड़ी सी आवाज होगी, जिसमें साइलेंसर लगा होगा थोड़ी कम आवाज हो जाएगी, जिसमें साइलेंसर नहीं लगा होगा ज्यादा भड़बड़ 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 करेगा। आवाज तो होगी क्योंकि वो मशीन से पैदा हो रही है, तो दिमाग तो अपनी आवाज करेगा ही। अब सवाल ये है कि हम कैसे उसमें साइलेंसर लगा सकते हैं, ये हमारे ऊपर है ना मित्रों। तो इसके साथ ही अब मैं लाइफ मैनेजमेंट के इस सब्जेक्ट को यहीं समाप्त करता हूं। अगले वीक से हम लोग फिर कुछ और नया और मजेदार और बड़ा व्यावहारिक सा सब्जेक्ट लेंगे, और यदि इस बीच आप लोग कोई सब्जेक्ट सुझा सकेंगे तो डेफिनेटली फिर मैं उस सब्जेक्ट पर बात करूंगा। दोस्तों, अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज पर। कल के AIR न्यूज के बारे में दो बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा जो इंपॉर्टेंट थी। डेफिनेटली एक सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड न्यूज थी और दूसरी ब्यूरोक्रेट्स से रिलेटेड न्यूज थी, और इसको लेकर के आज अखबारों में भी काफी कुछ लिखा गया है। दोस्तों देखिए, कभी कभी क्या होता है कि घटनाएं घटती रहती हैं, और हो सकता है कि शुरुआत में हम उस घटना की गंभीरता का उतना अंदाजा न लगा पाए, लेकिन धीरे 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 जब उस पर बातें होने लगती हैं, वो घटनाएं कॉम्प्लिकेटेड होने लगती हैं, ज्यादा चर्चा में आने लगती हैं, या विरोध होने लगता है, या ज्यादा समर्थन मिलने लगता है, तो फिर वो घटना एक प्रोमिनेंट घटना बन जाती है। और जैसे ही ये होता है हम ये मान लेते हैं कि नहीं नहीं, ये जो है अब हमारे काम की है, खासकर सिविल सर्विस की तैयारी के लिहाज से। मित्रों, आपने न्यूज में सुना सुप्रीम कोर्ट के दो डिसीजंस को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजंस दिए। पहला तो यह है कि मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घटना, और आप देख रहे हैं कि कुछ समय से लगातार अखबार इस पर लिख भी रहे हैं और एडिटोरियल कमेंट्स भी इस पर आए हैं, आर्टिकल भी इस पर आए हैं, और मैंने ये आर्टिकल और एडिटोरियल कमेंट्स आपको नॉलेज सेंटर पर प्रोवाइड भी किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि डेफिनेटली आप लोगों ने वो आर्टिकल्स पढ़े होंगे। दोस्तों, आपकी सफलता केवल इस बात पर निर्भर करेगी कि आप अपने प्रति कितने ईमानदार हैं, बस और कुछ भी नहीं। और इस तरह की ईमानदारी 1000 में एक स्टूडेंट में मिलती है, और लगभग लगभग यही रेशियो सिविल सर्विस परीक्षा की सफलता का है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं यहां क्योंकि मेरे पास जब इस तरह के मेल आते हैं कि मुझे आपकी क्लिपिंग्स पढ़ने में कितना समय देना चाहिए, मुझे बहुत दुख होता है। अरे भैया, कितना समय देना चाहिए, मैं क्या बताऊं कितना समय देना चाहिए। आप देखिए ना कि आप कितना समय दे सकते हैं। मैंने तो जो क्लिपिंग्स पढ़ी है उसमें बेकार एक भी नहीं है। बेकार मैंने 8 अखबारों से मैं छांटता हूं, और एक अखबार 20-20 पेज के होते हैं, तो 20 पेज के अखबारों में मैंने जो क्लिपिंग्स भेजी इनको जोड़ करके देख लीजिए, दो पेज भी नहीं बनेंगे। तो मैं तो उस 160 पेज से आपको छांट करके दो पेज प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मेरे लिहाज से तो सब पढ़ना चाहिए। अब उस पर मुझे कितना समय देना चाहिए, ये तो कोई स्टूडेंट ऐसे ही है जैसे पूछे मुझे कितने ग्राम खाना खाना चाहिए। अरे आप अपनी भूख देखिए, अपनी समझ देखिए, अपनी जरूरत देखिए, अपनी ग्रहण शक्ति देखिए। तो ये जो दिमाग है ना, ये आपको बेईमान बना रहा है, अपने प्रति ही बना रहा है, आपके साथ धोखा कर रहा है, क्योंकि समय का इस तरह से विभाजन नहीं होता है। समय का विभाजन होता है कि मुझे ये काम अच्छे तरीके से करना है, अब ये मेरी कैपेसिटी के ऊपर है कि इसे मैं कितनी देर में कर सकता हूं। सवाल ये होना चाहिए, कितने मिनट तक मुझे न्यूज सुननी चाहिए। अरे भैया, जितने मिनट की न्यूज आती है उतने मिनट की न्यूज सुननी चाहिए। लेकिन ये सब प्रश्न करते समय साफ है कि सोचा ही नहीं किया है। कोई कहेगा हम आपका ऑडियो गाइडेंस कितने मिनट तक सुने, अब बताइए आप, मैं कोई जवाब दे सकता हूं दोस्तों, सिवाय इसके कि अपना माथा पकड़ लूं कि मैं इसका क्या उत्तर दूं। दोस्तों इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये बात इस संदर्भ में कह रहा हूं कि मांस की बिक्री पर प्रतिबंध को लेकर के मैं इससे पहले आप लोगों को इंग्लिश में आर्टिकल प्रोवाइड कर चुका हूं, हिंदी में आर्टिकल प्रोवाइड कर चुका हूं और एडिटोरियल कमेंट्स भी प्रोवाइड कर चुका हूं। और याद रखिए आप लोगों को प्रोवाइड करने से पहले मैं उसे पढ़ता हूं, और एक ही सब्जेक्ट पर कई कई आर्टिकल अखबारों में आते हैं, उनमें से जो बेस्ट हो सकता है, अगर बेस्ट कोई भी नहीं है तो फिर मैं आपको देता ही नहीं हूं। जो बेस्ट आर्टिकल मुझे लगता है कि नहीं इसमें कुछ स्टूडेंट्स के जानने की है, मैं सारी चीजें नहीं कहता कि सारी चीजें आपके जानने की है, कुछ जानने की है वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कल इस बारे में अपना जो भी निर्णय दिया, निर्णय उसने अभी कुछ नहीं दिया, उसने कहा कि जो हाई कोर्ट ने जो प्रतिबंध को गलत ठहराया या उस पर रोक लगा दी है, वो अब हाई कोर्ट उसकी सुनवाई कर रही है, इसका सुप्रीम कोर्ट में करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने कुछ अच्छी टिप्पणियां की, टिप्पणी जैसे ये की कि जो व्यक्ति की अपनी जो रुचि है, व्यक्ति की रुचि को इस तरह से डिफाइन नहीं किया जा सकता, प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, ये उसकी च्वाइस होनी चाहिए। फिर उन्होंने पर्टिकुलर टाइम के बारे में भी, किसी अखबार में बहुत अच्छा कमेंट आया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का कमेंट है कि अगर करुणा और सहृदयता की बात है तो वो कुछ दिनों के लिए ही क्यों है, वो तो हमेशा के लिए होनी चाहिए, है ना, जैसे कि भी त्यौहार पर बंद कर देना चाहिए, या जैनियों का पर्युषण पर्व है या नवरात्र है, इस पर्टिकुलर टाइम पर बंद कर देना चाहिए, तो ये करुणा और सद्भाव का ही प्रतीक है क्योंकि ये हिंसा से जुड़ी हुई बात है। तो कोर्ट ने अच्छा क्वेश्चन किया कि अगर आप करुणा और सद्भाव की बात करें तो हमेशा के लिए होनी चाहिए, वो कुछ पर्टिकुलर दिन के लिए क्यों होना चाहिए। उन्होंने ऐसे कुछ कमेंट्स किए हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट है सुप्रीम कोर्ट की तरह। देखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो बात कहती है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ कहती है ना, उसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकती। और इसको आप सुप्रीम कोर्ट के ही एक दूसरे डिसीजन में देखेंगे जो न्यूज में था, वो था हरियाणा के चुनाव को लेकर के। हरियाणा में अभी पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं। हरियाणा सरकार ने एक कानून बनाया कि जो भी पंचायत के चुनाव में खड़े होंगे उनके पास एक निश्चित क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जिसमें हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट तक की है जाए क्वालिफिकेशन, और जो शेड्यूल कास्ट के होंगे या और कह लीजिए जो महिलाएं होंगी उनके लिए क्वालिफिकेशन पांचवीं कुछ इस तरीके का किया हुआ है। इसके बाद फिर उन्होंने कुछ और भी क्वालिफिकेशन बनाए कि जो कैंडिडेट खड़ा होगा चुनाव के लिए उसके घर में शौचालय होना चाहिए, फिर उन्होंने कहा कि उसके ऊपर बैंक लोन नहीं होना चाहिए, अपराध नहीं होने, अपराध इस तरह के कुछ उन्होंने तीन चार मापदंड बनाए, वही योग्य माना जाएगा। तो इसमें एजुकेशन का जो पॉइंट था वो सबसे वैलिड पॉइंट था। तो जिन लोगों के वो कैंसिल किए गए क्योंकि उनके पास वो एजुकेशन नहीं थी, एक तो थे वो, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर स्टे लगा दिया है, रोक लगा दी है। अब दोस्तों देखिए कि ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इसकी जरूरत को नहीं समझ रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के चलेगा, है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। अब वो डिसीजंस और आगे आएंगे, जब फाइनल डिसीजंस होंगे हम तब देखेंगे, लेकिन फिलहाल उन्होंने इसको अभी स्टे दिया है। तो इस तरीके से मित्रों, मुझे जो एक बहुत अच्छी बात लग रही है वो ये है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट एक सेफ गार्ड की तरह, एक बहुत ही सेफ गार्ड तो नहीं कहना चाहिए, एक बहुत ही अच्छे रक्षक के रूप में, सही मायने में एक प्रशासन कह लीजिए या समाज कह लीजिए, इन दोनों को एक रास्ता दिखाने का काम कर रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट खुद ये जानता है, व्यक्तिगत रूप से जानता ही होगा कि एजुकेशन बहुत जरूरी है, राइट टू एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशन का ही हिस्सा है, कि भैया वो तो एक मौलिक अधिकार है और ये कर्तव्य है राज्यों का कि वो उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें। तो अगर हम उससे इसको जोड़ करके देख लें तो स्वाभाविक है कि फिर चुनाव जो खड़ा हो रहा है वो एजुकेटेड हो। तो ये इस तरह के मामले जो होते हैं वो चूंकि सीधे सीधे नियम कानून और संविधान से जुड़े हुए होते हैं, एक तो इसका ये पक्ष होता है। जो दूसरा पक्ष होता है वो सामाजिक पक्ष होता है, सामाजिक उपयोगिता का पक्ष होता है, क्योंकि यदि हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो देखेंगे कि आप तुरंत ही एक बहुत बड़ा वर्ग चुनाव के अयोग्य घोषित हो जाएगा, राइट। और अगर वो चुनाव के अयोग्य घोषित हो जाता किसी भी कारण से, तो सीधी सी बात है कि उसके वो जो अधिकार है, जो राजनीतिक अधिकार है, जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं, वो खत्म हो जाएंगे, है ना। तो उसकी अपनी व्याख्या है, लेकिन अभी फिलहाल जो मैं सिविल सर्विस की दृष्टि से आपको जो बात बताने जा रहा हूं वो ये कि इस तरह के जब डिसीजंस आते हैं तो वो आपको ध्यान से सुनना चाहिए, इस पर जो लेख होते हैं, एडिटोरियल कमेंट होते हैं, उनको ध्यान से पढ़ना चाहिए, उस पर कुछ पॉइंट्स आपको बकायदे नोट कर लेने चाहिए, और इस तरीके से आपको अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करना चाहिए, क्योंकि ये जो इश्यूज है मित्रों ये केवल जनरल स्टडीज के हिस्से नहीं होते हैं, ये आपके एक तरह से जो ऑप्शनल पेपर्स हैं उनके भी हिस्से होते हैं, ये आपके एसे राइटिंग के भी हिस्से होते हैं, और यहां तक कि ये आपके जनरल स्टडीज का जो फोर्थ पेपर है उसका भी हिस्सा होता है, और जनरल स्टडीज का तो हिस्सा होता ही है। मित्रों अब मैं दूसरी खबर पर आता हूं जो एक इंपॉर्टेंट खबर है और वो खासकर ब्यूरोक्रेट्स को लेकर है। हालांकि न्यूज में एक बात ही ली गई थी, वो ये थी कि राजस्थान में खासकर जो खनिज विभाग के जो प्रधान सचिव थे वो आईएएस ऑफिसर ही होते हैं, उनको न्यायालय में पेश किया गया, मतलब अखबारों में जो दिया हुआ है कि उनको एक दोषी ठहराया गया है कि कुछ मतलब ब्राइब की मांग की गई थी और 2 करोड़ रुपए मिले और 20 करोड़ की मांग की गई थी, खनिज का कुछ ठेका वेका देने का कोई मामला होगा, घटनाओं से हमें ज्यादा सरोकार नहीं होना चाहिए, तो उसके तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब इसको सोच करके देखिए कि अगर आप किसी खनिज के लाइसेंस के लिए या किसी भी काम के लिए अगर कोई ब्यूरोक्रेट 20 करोड़ रुपए मांग रहा है और जब कोई भी ठेकेदार उसको 20 करोड़ रुपए देगा तो उससे वो 200 करोड़ या 2000 करोड़ रुपए पता नहीं कितना कमाएगा और कितनी बड़ी राष्ट्रीय क्षति होगी। ये एक खबर थी, मैं इसी खबर के साथ जोड़ करके आपको थोड़ी सी दूसरी चीज भी बता रहा हूं। जैसे आप देखिए कि पिछले लगभग 1 महीने से ब्यूरोक्रेसी में आपको एक हलचल सी दिखाई दे रही है, अभी वो कॉन्क्रीट शेप नहीं ले पा रही है लेकिन धीरे धीरे वो शेप लेगी और एक तरह से क्वेश्चन के रूप में एक सॉलिड टॉपिक के रूप में वो सिविल सर्विस के लिए इमर्ज हो जाएगी, एक साकार रूप ले लेगी, क्योंकि सिविल सर्विस इटसेल्फ इज ए आप कह लीजिए कि वो ब्यूरोक्रेसी है, टॉप मोस्ट पोस्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अब आप 3-4 चीजों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, एक राजस्थान में अभी जो घटना हुई ये आपके ब्राइब का मामला है, दूसरा आपको ये भी मालूम है कि जो अभी कुछ समय पहले शायद 1 महीने पहले की ही बात होगी कि होम सेक्रेटरी जो हमारे थे एलसी गोयल उनको हटाया गया और उनकी जगह पर दूसरे सेक्रेटरी लाए गए, और ये अभी अखबारों में ये भी आया है शायद आज के इकोनॉमिक टाइम्स में है कि पिछले 15 महीनों में यानी कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से लगभग 30 विभागाध्यक्ष 30 सेक्रेटरीज हटाए जा चुके हैं अपने टर्म्स पूरा होने से पहले, यानी कि जो हाईएस्ट ब्यूरोक्रेसी है हाईएस्ट लेवल की जो ब्यूरोक्रेसी है उनमें काफी इस तरह की शिफ्टिंग का मामला चल रहा है, मतलब फटाफट उनका ट्रांसफर किया जाता है, जबकि इनके ट्रांसफर करने की अपनी एक बकायदे पद्धति सिविल सर्विस बोर्ड होता है और वो रिकमेंड करती है, इस तरह के प्रोविजंस भी हमारे यहां हैं। एक आपने कल के न्यूज में या परसों की न्यूज में यह भी सुना होगा कि एक आईपीएस ऑफिसर थे जिन्होंने मुलायम सिंह जी पर यह आरोप लगाया कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी, हालांकि ये खबर बहुत पहले भी आ गई थी 2-1 महीने पहले लेकिन उस पर एक्शन नहीं हुआ था, फिर जब वो कोर्ट में गए तो फिर मतलब कोर्ट ने फिर कहा है कि नहीं मुलायम सिंह जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। यहां भी आपको एक ब्यूरोक्रेट्स दिखाई दे रहे हैं। फिर जो अशोक खेमका हैं जो हरियाणा कैडर के ऑफिसर हैं इनका भी मामला छोटा मोटा आपको सुनने में मिला होगा कि किस तरह से जो खाद्यान्न विभाग है बीज विभाग उसमें एक भ्रष्टाचार को लेकर के वो फिर से एक संघर्ष कर रहे हैं। मित्रों इसी के साथ ही आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में एक एडिटोरियल कमेंट है, ये मैं आपको नॉलेज सेंटर पर प्रोवाइड भी कर रहा हूं, और वो ये है कि भारत सरकार ने ये आदेश दिया है सभी मंत्रालयों को कि आपके यहां एक सूची बनाइए कि जो अफसर करप्ट हैं और यहां तक कि अयोग्य हो गए हैं उनकी एक सूची बनाइए और उनको रिटायरमेंट दे दीजिए, मतलब उनको सर्विस से उनका रिटायरमेंट कर दीजिए, उनको पदमुक्त कर दीजिए। अभी तक हालांकि ये सिविल सर्विस रूल में है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये कोई तुगलगी आदेश है, ये रूल्स में भी है कि 15 साल की सर्विस के बाद यदि कोई अधिकारी अक्षम है तो उसे हटाया जा सकता है। यहां तक कि 1980 में इस तरह का एक मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने भी गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है कि यस यदि पब्लिक इंटरेस्ट में ये चीजें हैं तो उसे हटाया जाना चाहिए, लेकिन इसे पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब ये पनिशमेंट के रूप में नहीं होना चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट में तो हटाया जाना चाहिए, मतलब अयोग्य है अक्षम है भ्रष्टाचार के मामलों में फंसा हुआ है तो उसे हटाया जा सकता है। यहां तक कि पे कमीशन भी लगातार इस बात को कहते रहे हैं, पिछले 3 पे कमीशन अभी तक 6 पे कमीशन हो चुके हैं, लगातार ये बात कहते रहे हैं कि जो ऑफिसर्स कि जो सफलता है जो कंटिन्यूटी है जो सैलरी है जो अवार्ड्स हैं वो उसके कार्य क्षमता के प्रदर्शन के साथ उसको जोड़ा जाए। जैसे मान लीजिए कि सैलरी बढ़ाना है तो उसको वर्क परफॉर्मेंस के हिसाब से दिया जाए, किसका वर्क परफॉर्मेंस कैसा रहा है, और बल्कि सिक्स्थ पे कमीशन ने तो यह भी कहा कि जो वर्क परफॉर्मेंस की जो रिपोर्ट है वो आउटसाइडर एजेंसी को सौंपी जाए, इनसाइडर एजेंसी को। इनसाइडर एजेंसी का मतलब है सरकारी अधिकारी, अगर वही वो लोग वर्क को परफॉर्म करें, मतलब उसका नाप तौल करेंगे, जो लेखा जोखा लेंगे, तो वो फिर ठीक नहीं रहेगा। और एक्सटर्नल कोई ना कोई एजेंसी होनी चाहिए, तटस्थ एजेंसी जो सभी का मूल्यांकन करे। तो मित्रों, अब आप देखें कि किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी में भी अब एक हलचल सी पैदा हुई है और उन्हें भी एक जिम्मेदार बनाने की कोशिश हो रही है। इसको लेकर के मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो न्यू मैनेजमेंट है उसके बारे में मैं आप बातें कर चुका हूं। अब खासकर 21st सेंचुरी में जहां पर कि अब दक्षता बहुत ज्यादा मायने रख रही है, अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, रिजल्ट ओरिएंटेशन की बात हो रही है, तो डेफिनेटली ब्यूरोक्रेसी की भी जो एक शुरुआत की बात थी, हम लोगों के समय में यही कहा जाता था कि सरकारी नौकरी क्या मिली, अब सरकारी दामाद बन गए, भैया अब हम काम नहीं करेंगे, बस हम तो राज्य करने आए हुए हैं। तो जब तक वो डेट अटेंडेंसी नहीं छूटेगी, सही मायने में दोस्तों राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। तो ये जो अभी 3-4 घटनाएं मैंने बताई हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके दिमाग में होनी चाहिए एग्जाम्पल के रूप में, ताकि सिविल सर्विस में आ रहे बदलाव या बढ़ रहे दबाव या अकाउंटेबिलिटी बनाने की चल रही कोशिशें क्या क्या हैं, पिछले समय में हुई हैं, इस तरह का जब कोई प्रश्न आए तो आप बकायदे उनके तथ्यात्मक उत्तर दे सके। तो मित्रों, इससे रिलेटेड जो एडिटोरियल कमेंट है आज टाइम्स ऑफ इंडिया में है, वो आपको नॉलेज सेंटर में अवेलेबल रहेगा। दोस्तों, तो ये दो इंपॉर्टेंट खबरें थी, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आपके नॉलेज सेंटर पर अवेलेबल है, उन्हें आप पढ़ लेंगे। खासकर दो क्लिपिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें एक तो भुगतान बैंक को लेकर के जनसत्ता का छोटा सा एडिटोरियल कमेंट है, और एक जो है मणिपुर में जो अलगाववादी स्थितियां जो आपको देखने को सुनने को पढ़ने को मिल रही हैं उनके ऊपर भी एक डिटेल आर्टिकल है, आप लोग उसे जरूर देख लीजिएगा। मित्रों, अब मेरे पास एक नाम आया हुआ है जो अक्टूबर के बैच में स्टूडेंट आ रहे हैं, इनका नाम है बिट्टन मानन, ये सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं, इन्होंने अपना मोबाइल नंबर दिया है, जो स्टूडेंट उधर उस एरिया से आ रहे हैं वो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिट्टन मानन का नंबर है 9563136822। दोस्तों, मैं एक बात यहां बताना चाहूंगा कि कुछ दूसरे स्टूडेंट्स के मोबाइल नंबर मांगे हैं। मित्रों, ये हमारा एक एथिक्स है, कह लीजिए कि जब तक मोबाइल नंबर देने वाला व्यक्ति खुद तैयार नहीं हो, हम किसी का भी मोबाइल नंबर इस तरीके से प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। मित्रों, एक मेल है जो खासकर मैंने बहुत पहले कहा था कि एनालिसिस पावर कैसे डेवलप करें, इसको लेकर के मैं एक किताब लिख रहा हूं, लेकिन अभी उस किताब को आने में बहुत वक्त लगेगा। मैं समझता हूं कि लगभग हो सकता है कि साल भर का वक्त लग जाए, लेकिन वो राइटिंग के स्टेज पर है और लगभग 50% काम हो चुका है, लेकिन अभी इसमें वक्त लगेगा। एक मेरे पास और मेल है जिन्होंने अपने हेल्थ को लेकर के एलिजिबिलिटी की बात कही है, लेकिन चूंकि जो हेल्थ के आपने पॉइंट्स लिखे हैं वो थोड़े से टिपिकल हैं, स्पेसिफिक किस्म के हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसके लिए यदि आप यूपीएससी में लेटर लिखेंगे तो वहां से आपको सही जवाब मिल सकेगा। मित्र, चूंकि उसके बारे में मैं बहुत अच्छे तरीके से बताने में समर्थ नहीं हूं, इसलिए मैं आपको आधी अधूरी कोई भी बात बता करके आपको किसी भ्रम की स्थिति में रखना नहीं चाहता। दोस्तों, अब मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मेल लिखे हैं, और इन्हीं में से कुछ के नाम हैं, अजय कुमार द्विवेदी नई दिल्ली से, परमहंस कुमार बलिया से, विवेक गर्ग शिमला से, कुलजीत सैनी बिजनौर से, रोहन कुमार भोपाल से, रजिया और विनय कुमार पांडे इलाहाबाद से। तो दोस्तों, अब इसी के साथ ही अब मैं आप लोगों से 2 दिन के लिए इजाजत लेना चाहूंगा, फिर मुलाकात होगी, खूब सारी बातें करेंगे, तब तक आप अपने इन 2 दिनों को एंजॉय करें और जो काम आपके अधूरे रह गए हैं उन्हें पूरे करें, ताकि ऐसा न हो कि आने वाले फिर 7 दिनों में आपका दिमाग इन अधूरे कामों की ओर भागे और पढ़ाई के प्रति जो आपका फोकस होना चाहिए वह गड़बड़ हो। आप सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं, और आपका जो पूरा 2 दिन का जो वीकेंड है ये बहुत अच्छा बीते, ये ईश्वर से कामना और प्रार्थना भी। दोस्तों, अब इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।